हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और हर एकादशी में हम लोग श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करते हैं। प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ प्रभुपाद जी के शिष्य सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज जी ने लिखी है और इसमें प्रभुपाद की पूरी जीवनी का वर्णन किया गया है और हम सब भक्तों के लिए बहुत ही प्रेरणात्मक है और मालूम चलता है कि प्रभुपाद ने कैसे इस आंदोलन की स्थापना की, किन किन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और फिर जब इस्कॉन संस्था की स्थापना हो गई तो इस्कॉन संस्था के प्रारंभिक वर्षों में भक्तों को किस तरह का संघर्ष करना पड़ता था और किस तरह से प्रभुपाद उनका मार्गदर्शन करते थे। तो ये सब हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे प्रेरणा के लिए अति आवश्यक है और प्रत्येक इस्कॉन के भक्त का श्री प्रभुपाद से व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के आदि शिक्षा गुरु हैं, हम सबके शिक्षा गुरु हैं प्रभुपाद और हमारा प्रभुपाद के साथ व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद अपने वपुर रूप में आज हमारे बीच में नहीं है तो अब हमारा प्रभुपाद के साथ संबंध स्थापित नहीं हो सकता। प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद अभी भी उपस्थित है अपने आदेशों में, अपनी पुस्तकों में, अपने भक्तों के बीच में। तो हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हमें प्रभुपाद से व्यक्तिगत संबंध जोड़ना है और जिन भक्तों ने प्रयास किया है प्रभुपाद से व्यक्तिगत संबंध जोड़ने का, उनको निश्चित रूप से सफलता मिली है। प्रभुपाद से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभुपाद को हम प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद की पूजा करते हैं, साथ में जब प्रभुपाद की लीलाओं में सुनेंगे तो फिर हमें मालूम चलेगा कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या क्या किया। जैसे बोलते हैं प्रभुपाद गॉड इज ग्रेट, ये तो हर कोई जानता है गॉड इज ग्रेट, लेकिन जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं पढ़ते हैं तब मालूम चलता है कि हाउ ग्रेट इज गॉड, कि भगवान कितने महान हैं और फिर हमारी श्रद्धा उनके प्रति और बढ़ती है। इसी ढंग से प्रभुपाद लीलामृत जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, इस पे मनन करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि प्रभुपाद वास्तव में हमारे कितने बड़े हितैषी हैं। प्रभुपाद जब भी अपने शिष्यों को पत्र लिखते थे नीचे क्या लिखते थे, यूअर एवर वेल विशर, सदैव आपके हितैषी। ऐसे दिल्ली पुलिस भी लिखती है ना ऐसे कुछ, सदैव आपके साथ, लेकिन बाद में आते हैं जब जरूरत पड़ती है उसके पास में। लेकिन प्रभुपाद सदैव आपके हितैषी, हमारे हितैषी हैं श्री प्रभुपाद। तो परम सौभाग्य हम सबका कि हम प्रभुपाद जी की शरण में हैं और जो कि केवल एक मात्र प्रमाणिक गुरु ही नहीं है, ऐसा नहीं कि एक प्रमाणिक गुरु है प्रभुपाद इसलिए हमारा सौभाग्य है, केवल मात्र एक प्रमाणिक गुरु ही नहीं है, प्रभुपाद भगवान के अंतरंग पार्षदों में से हैं और प्रभुपाद जी को विशेष रूप से इस धराधाम पृथ्वी पर भेजा गया बद्धजीवों के उद्धार के लिए और इस कलयुग में एक विशेष योजना के साथ इस संकीर्तन आंदोलन में चैतन्य महाप्रभु के सेनापति के रूप में। तो ये आंदोलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आंदोलन के नेता श्री प्रभुपाद बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर हम जितना प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, चर्चा करेंगे उतना ही हमारा शुद्धिकरण होगा। इसलिए इस कॉम के कुछ केंद्रों में एकादशी के दिन एक्सक्लूसिव श्री प्रभुपाद लीलामृत, तो इसको हमें रिलीज करना चाहिए और प्रभुपाद से प्रार्थना करते हुए कि हम उनके प्रति अपनी शरणागति को बढ़ा सकें। तो पिछली एकादशी भी शनिवार के दिन ही थी, कौन से दिन था, 10 मई। आप में से कितने भक्त लोग उस दिन उपस्थित थे कक्षा में, वेरी गुड। तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए, है ना, ज़्यादा दिन 15 दिन पुरानी ही बात है। तो बताइए क्या चर्चा का विषय था पिछली एकादशी में, हाँ बताइए। हाँ
हाँ
हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रसिक प्रिय प्रभु, रसिक प्रिया प्रभु व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पिछले कई सालों से, इनका पूरा परिवार मैराथन में उत्साह से जुड़ता है। धन्यवाद। और क्या किसी को याद है कुछ पॉइंट्स, क्या चर्चा हुई थी? हाँ प्रभु जी, हाँ कौन वेट करते थे? अच्छा गुड है, कौन वेट करते थे? रामेश्वर प्रभु, क्योंकि मेन डिस्ट्रीब्यूटर थे। दूसरे मेन डिस्ट्रीब्यूटर कौन थे? त्रिपुरा रे प्रभुपाद जब ये, हाँ माता जी, जोर से बोलिए माता जी। हाँ वैष्णव ड्रेस में जाना चाहिए, गुड। और जब प्रसंग शुरू हुआ था तो प्रभुपाद विश्व के कौन से हिस्से में थे? लॉस एंजेलिस। और जब प्रसंग समाप्त हुआ तो प्रभुपाद विश्व के कौन से हिस्से में थे? कहां से? बॉम्बे में। वेरी गुड। तो अभी प्रभुपाद बॉम्बे में ही हैं, तो आप आगे चर्चा शुरू करेंगे। तो प्रभुपाद ने निर्णय यह था पुस्तक वितरण के लिए अपनी वेशभूषा को बदल सकते हैं, लेकिन वो सोबर होनी चाहिए, डिसेंट होनी चाहिए, तिलक लगा के कंठी लगा के जाना चाहिए हमें, जैसे कि लोगों को कृष्ण का स्मरण हो। तो अब गर्मा गर्मी चल रही थी पहले की वेशभूषा, एक सन्यासी ने प्रभुपाद को कुछ गलत फीडबैक दे दिया कि लोग हिप्पी बन के जा रहे हैं, तो फिर प्रभुपाद को, उन्होंने हिप्पी तो नहीं बनना चाहिए, बाद में प्रभुपाद को स्पष्टीकरण किया गया कि वो हिप्पी बन के नहीं जाते थे। तो अभी आज के विषय में कुछ और चर्चाएं होंगी पुस्तक वितरण के विषय में ही। कृपया पुस्तकों का वितरण कीजिए, तो हम देखेंगे किस किस तरह तरह की समस्याएं उस समय आ रही थी जो आजकल भी हमें आती हैं। वितरकों की विधियों को लेकर एक असहमति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इस कौन सचिव को लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें बहकाकर या उन पे दबाव डालकर उनसे पुस्तकें खरीदवाई गई थी। इस शिकायत का उत्तर भक्तों ने अपने अपने ढंग से दिया। क्या शिकायत आ रही थी? दबाव डाल के, जबरदस्ती और बहला फुसला के, बहकाकर उनको पुस्तकें दी गई हैं, है ना? हम भी करते हैं कभी कभी ऐसा, करते हैं कभी दबाव डाला किसी ने पुस्तक वितरण करते हुए, है ना? मैराथन में हम यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं बड़ा, और फिर बोलते हैं किसी ना किसी ढंग से करना है, ये इनके इन प्रकार है, और कई बार हम दबाव भी डालते हैं। पुस्तक वितरकों ने प्रभुपाद के इस आदेश का समर्थन किया कि जितनी संख्या में हो सके पुस्तक वितरित की जाए। उन्होंने तर्क दिया कि केवल इसलिए पुस्तक वितरण के कार्य को धीमा नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई है। ठीक है, कुछ लोगों को समस्या है, इसका मतलब ये नहीं कि पुस्तक वितरण को स्लो किया जाए। ये किसका मत था? भक्तों का, जो बिल्कुल आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बोले लोग तो करते रहेंगे बुराई, इसके मतलब थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कम कर दें, प्रभुपाद की आगे ज्यादा बांटे। उन्होंने शिला प्रभुपाद के इस कथन का उद्धरण दिया कि संकीर्तन का विरोध का अर्थ है कि वह शुद्ध और सच्चा है। कि लोग विरोध करें इसका मतलब ये आंदोलन वास्तव में शुद्ध और सच्चा है, विरोध तो होना ही चाहिए, इसका मतलब हम सफल हो रहे हैं, है ना? भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज कहते थे जब आप प्रवचन देने जाएं और वहां लोग आपको कुर्सियां उठा के मारे, इसका मतलब होगा प्रवचन कामयाब हुआ। कुछ हलचल होनी चाहिए, कुछ लोगों का हृदय हिलना चाहिए, सोना नहीं चाहिए उनको, बस उनको लगे क्या बात कर रहे हैं, इतनी गलत बात कैसे कर दी, नई बात बताओ, पूरे हृदय में क्रांति आ जाए। तो लोग कह रहे हैं अच्छा है, संकीर्तन शुद्ध और सच्चा है, इसलिए अपोजिशन हो रहा है। प्रभुपाद इस बात की व्याख्या अपने पुस्तकों में कर चुके थे जब वे मुसलमान शासन द्वारा चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन दलों के रोके जाने की ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने लिखा था, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं पुस्तक में, हमें समझ लेना चाहिए कि ऐसी घटनाएं भूतकाल में आज से 500 वर्ष पहले हो चुकी हैं और उनका आज भी होते रहना इस बात का द्योतक है कि हमारा संकीर्तन आंदोलन वास्तव में प्रमाणिक है, क्योंकि यदि संकीर्तन कोई नगण्य संसारिक घटना होती तो राक्षस लोग इस पर आपत्ति ना उठाते। प्रभुपाद जी किसकी बात कर रहे हैं, ये कौन सी घटना की बात कर रहे हैं? चांदकाजी और चैतन्य महाप्रभु। अमेरिका के लोगों ने सार्वजनिक कीर्तन, भक्तों के पहनावे, कृष्णा भानमित आंदोलन के दर्शन और आहार पर भी आपत्ति की थी। कोई ना कोई तो आपत्ति करता ही रहेगा। पुस्तक वितरकों ने कहा कि मुख्य चीज तो बद जीवों को उबारने की है जिन्हें अगले जन्म में नारकीय जीवन मिलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति एक पुस्तक पा लेता है और उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेता है तो उसका जीवन बदल सकता है। अच्छा आर्गुमेंट है, ये बद जीव है, ये निश्चित रूप से नर्क में जाएगा। इसको बचाने के लिए अगर थोड़ी सी जबरदस्ती भी कर दी, थोड़ा झूठ भी बोल दिया, थोड़ा बहलाव दी उसको, दबाव भी डाल दिया, लेकिन वो नर्क जाने से बच गया। एक पेज भी उसने पढ़ लिया वो उसका नर्क जाने से वो बच जाएगा। तो क्या होगा थोड़ी सी जबरदस्ती कर दी तो? क्या कहना है आप लोगों का? आर्गुमेंट ठीक है कि गलत है? ठीक है ना? चलिए आगे सुनते हैं। किंतु अन्य भक्त, अब बाकी भक्तों का क्या कहना है, जिनमें मंदिरों के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, शिकायतों से आंदोलित थे, बहुत गुस्से में थे, मंदिरों के जितने भी अध्यक्ष थे, किसी को याद आया कि प्रभुपाद इस बात पर 1970 ईस्वी में अपना विचार दे चुके हैं। तो 1970 में प्रभुपाद जी ने क्या विचार दिया था, और ये जो घटना चल रही है ये 1973 की है। तो प्रभुपाद का क्या विचार है, हर कार्य बहुत उत्साह से करो, हमारे सभी कार्य खुले होने चाहिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, जिससे हमारे लक्ष्य की आलोचना कोई ना कर सके। इसलिए हमारा प्रत्येक व्यवहार वैष्णव स्तर पर होना चाहिए, चूंकि हम हर चीज कृष्ण भावना भावित ढंग से करते हैं, अतः भगवान कृष्ण हमारे ऐसे सत्यनिष्ठ कार्यों में सहायता करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक हमें सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि किसी कार्य का परिणाम ही महत्वपूर्ण नहीं है, उस कार्य को करने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्य उत्साह से करना चाहिए और बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्रभुपाद ये बता रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर हम प्रत्येक कार्य वैष्णव तरीके से करेंगे तो क्या मदद मिलेगी? हाँ, भगवान श्री कृष्ण स्वयं मदद करेंगे। तो आप दो तरह के मत हो गए, एक पुस्तक वितरकों का मत था कि किसी ना किसी ढंग से बद जीव के हाथ में पुस्तक पहुंचाई जाए, नहीं तो नरक जाने वाला है जबरदस्ती करके कुछ भी करके, और दूसरी तरफ जो मंदिर के अध्यक्ष थे और जो और परिपक्व भक्त थे उनको वो प्रभुपाद जी का ये 1970 का विचार बताते थे कि जो कुछ करो वैष्णव तरीके से करो। अब क्या कहना है आपका, ये मत ठीक है? पहले वाला भी ठीक कह रहे थे आप और दूसरे वाला भी ठीक कह रहे हैं, तो आज चर्चा करेंगे कि इसमें समंजस कैसे बनाया जाए, इसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए। प्रभुपाद चाहते थे कि पुस्तक वितरक उनके आदेशों का पालन करें, किंतु उन्होंने उन्हें ऐसी आजादी नहीं दी थी कि वो जो चाहे सो करें और दावा करें कि उन्होंने जो कुछ किया वह कृष्ण के लिए किया है। प्रचार विशेषज्ञता की अपेक्षा रखता था, लोगों से कोई पुस्तक खरीदवाना ही काफी नहीं था, उनके मन में सही धारणा उत्पन्न करना भी जरूरी था। यह है दोनों के बीच में समन्वय, कि केवल पुस्तक बेचना ही पर्याप्त नहीं है, जिसको हम पुस्तक दे रहे हैं उसके हृदय में सही धारणा उत्पन्न होनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण के लिए कि सब कुछ कृष्ण के लिए, एनीथिंग फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए हम झूठ भी बोल सकते हैं, है ना, कृष्ण के लिए थोड़ा सा दबाव भी डाल सकते हैं, नहीं प्रभुपाद बोले ये कह के आप कुछ भी नहीं कर लो, मेरी आज्ञा का पालन है, मेरी आज्ञा है ज्यादा से ज्यादा पुस्तक बांटो, ये भी मेरी आज्ञा है, और ये भी मेरी आज्ञा है कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तक बांटो लेकिन वैष्णव तरीके से बांटो, समझे? तो देखिए पुस्तक वितरण प्रचार का सबसे उत्तम तरीका है, प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रीचिंग इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रीचिंग का अर्थ होता है किसी के हृदय को छूना, प्रीचिंग का अर्थ केवल मात्र प्रवचन कीर्तन देना नहीं है ना, ऐसा कीर्तन कर रहे हैं किसी के हृदय को छू ही नहीं रहा तो क्या लाभ इसका, ऐसा भगवान की कथा कर रहे हैं कि किसी के हृदय को नहीं छू रहा, ऐसा पुस्तक वितरण कर रहे हैं कि उसने पुस्तक ले तो ली लेकिन बहुत ही क्षुब्ध हो गया बेचारा, बहुत ही अंदर से कष्ट में चला गया कि मुझे बेवकूफ बना के चला गया, गुस्सा आ गया। क्या कई बार भक्त लोग होते हैं, पुस्तक दी कहे कितने की है, जितना भी दे दो क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ दीजिए। बोला दिया 100, थोड़ा ज़्यादा दीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बोला ठीक है इसकी कीमत 125 रुपये है, तो उसने 200 रुपये दे दी। बोले ठीक है, बोले वापस करो, कोई बात नहीं कोई और पुस्तक ले लीजिए। तो व्यक्ति इतना इरीटेट हो जाता है, लो यार जाओ, अच्छा सिर दर्द कर, इतनी जल्दबाजी में हूँ, ऑफिस से परेशान होकर आया हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी है, अपने रेड लाइट पर रोक लिया पहले, फिर ये फिर वो फिर ये नहीं ये करके शुरुआत कहाँ करते हो, बात ले कहाँ जाते हो, पैसे वापस करते नहीं, दो किताबें मौत पकड़ा दी, ग्रीन लाइट होगी जबरदस्ती चला गया। क्या एक्सपीरियंस हो गया यार, कैसे लोग हैं यार, कहाँ से मूड खराब कर दिया सर। अगली बार जब उसको कोई भक्त दिखाई देगा तो कहेगा बात ही नहीं करनी इससे, ऐसा भी हो सकता है। तो कई बारी उस समय अमेरिका में लोग तरह तरह के तरीके अपना के किसी ना किसी ढंग से पुस्तक चेप रहे थे लोगों को, और उसके बाद में ये हालत हुई कि एक समय तो पुस्तक वितरण बहुत तेजी से बढ़ गया लेकिन बाद में बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम, ये प्रभुपाद कहते हैं हमको ऐसा सीखना है, ऐसी कुशलता अपने विकसित करनी है कि हम लोगों को नाराज भी ना करें, लोग बहुत खुशी खुशी लें और ज़्यादा से ज़्यादा लें, खुशी खुशी लें और ज़्यादा से ज़्यादा लें। जब हम किसी को पुस्तक बांट रहे हैं, हमें उसको एक, जैसे एक आम व्यक्ति बिजनेसमैन एक उसको कस्टमर की तरह देखता है, तो कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस, तो हम उसको कुछ बेचने नहीं गए, हम उसकी सेवा करने गए हैं। हमें सोचना चाहिए मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। और वास्तव में जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो हम गुरु के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, हमें भिक्षा मांगनी चाहिए, और भिक्षा मांगने के लिए उस व्यक्ति को हमें हृदय से आदर करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति को पुस्तक बांट रहे हैं, हृदय से उसको आदर करना चाहिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी प्रतिदिन कम से कम 2000 वैष्णव को प्रणाम करते थे, 1000 बार प्रणाम करते थे गोवर्धन को और 2000 बार प्रणाम करते थे वैष्णवों को। तो जब ज्यादा से ज्यादा पुस्तक बांटे जाए तो हमें मौका मिलता है ज्यादा से लोगों को हम प्रणाम करें। अब किसी को बाहर जाके किसी को ऑफिस में हम वैष्णव प्रणाम तो नहीं कर सकते, लेकिन हृदय से हम उसके पैरों चरणों में प्रणाम करें। और हमें देखिए ये भावना होनी चाहिए कि बड़े विनम्र भाव से हम भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन उसको पैकेजिंग बाहर से हम उसको बड़े अच्छे ढंग से इंटेलिजेंटली प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। व्यक्ति को लगना चाहिए हाँ वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात कर रहा है, किसी एक सज्जन व्यक्ति से बात कर रहा है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, इसका चरित्र बहुत अच्छा है, तो ये बातें उसके हृदय को छुएंगी। हम लोग इस्कॉन और प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं, हमें हमेशा सोच के जाना चाहिए। तो उनके मन में सही धारणा उत्पन्न करना ये विशेषज्ञता है, ये हमें सीखना चाहिए। पुस्तक वितरकों का मानना था कि वे भरसक ठीक कार्य कर रहे हैं किंतु वे अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि अन्य पुस्तक वितरक सोचते हैं कि वे इससे अच्छा कर सकते हैं तो उन्हें करके दिखाना चाहिए कि किसी को उत्तेजित किए बिना पुस्तक वितरण कैसे किया जा सकता है। पुस्तक वितरण का कार्य प्रतिदिन सारा दिन करना कठिन था, लोग मन और इंद्रियों से पहले ही उत्तेजित थे और अपने व्यवसायों से, सरकारों से और व्यक्तिगत संबंधों से वे वैसे ही परेशान हैं, इसलिए आश्चर्य नहीं है कि कोई निर्ही भक्त उन्हें क्षुब्ध कर बैठता हो। वैसे ही व्यक्ति इतना परेशान होता है रोजमर्रा की जिंदगी से, ऊपर से कोई व्यक्ति आए पुस्तक ले लो तो परेशान तो हो ही जाता है, है ना। जैसे हम लोग पहले रेड लाइट पर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता था और कुछ लोग बड़े परेशान होते थे। एक बार इस ग्रेस विजेंद्र नंदन प्रभु जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, वो किसी टीवी चैनल में इंटरव्यू देने गए, तो टीवी चैनल में इंटरव्यू ले रही थी एक माता जी, उन्होंने पूछ ही लिया ये क्या आप पुस्तक रेड लाइटों पर पुस्तकें बांट भगवद गीता बांटते हैं, इतनी आपने बेकदरी कर दी भगवद गीता की, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ और सड़कों पर बांट रहे हैं, क्या तरीका है, है ना। तो विजेंद्र प्रभु ने बड़ा अच्छा उत्तर तभी दिया, उन्होंने बोला आपको सड़कों पर भगवद गीता बांटने में बड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन उन्हीं सड़कों पर अश्लील पत्रिकाएं और पोर्नोग्राफी की मैगजीन बांटी जा रही है उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, खुलेआम रेड लाइट पे अश्लील पत्रिकाएं बांटी जा रही हैं उसमें हर कोई, सब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हम भगवान का संदेश बांट रहे हैं इसमें आपको दिक्कत हो रही है, आपको इसकी बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने उत्तर दिया। तो इसी ढंग से हर कोई अपने जीवन से परेशान है, और जब वो देखता है कि भक्तों को भक्त लोग उनको रोककर पुस्तक दे रहे हैं तो कई भाई लोग वैसे ही नाराज हो जाते हैं। प्रश्न यह था कि पुस्तक वितरक अपने काम में कैसी तरकीबें अपनाएं। वितरकों का कहना था कि वे छात्र थे और युवा जनों से मादक पदार्थों के सेवन छुड़वाने में सहायता कर रहे थे, अथवा उनके द्वारा वितरित पुस्तकें ऐसी थीं जो आधुनिक जीवन की विकट स्थितियों का समाधान बताती थी। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं था, किंतु कभी कभी बलाघात की अतिशयता हो जाती थी। बलाघात क्या हुआ? जो जबरदस्ती है ना, जय श्री राधा राधे करमणि कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव स्मृत। आप में से किसी भक्त का ये अनुभव है कि किसी ने आपको बोला हो कि आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं पुस्तक वितरण में? कितने भक्त लोग इसमें यहाँ कभी पुस्तक वितरण में भाग लिया किस भक्तों ने? वेरी गुड। तो किसी का कोई ऐसा अनुभव है कि किसी ने बोला कि इतनी जबरदस्ती मत कीजिए? है किसी का अनुभव? है क्या? अच्छा, हमें याद है शुरुआत के वर्षों में कोई रथ यात्रा निकल रही थी साउथ दिल्ली में, तो किसी एक माता जी के पास गया डिपार्टमेंटल स्टोर में, नहीं ले रही थी, बहुत जबरदस्ती की, बहुत जबरदस्ती की। तो पंजाबी की कोई बूढ़ी महिला थी, कहती मगरों ही पै गए ले। बड़ी मुश्किल से स्वर में जा मगरों पै गए जा। तो याद रहता हमें कि ठीक है, कभी इतना किसी को इरिटेट नहीं करना चाहिए कि एकदम दुखी हो गए ले भैया स्वर पे जाओ यहाँ से, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी बहुत जबरदस्ती तो करनी पड़ती है, क्योंकि इनिशियल रिएक्शन तो ये बता नहीं चाहिए, है हमारे पास पहले से ही है, सबका इनिशियल रिएक्शन तो यही होगा। लेकिन अब हमें वो कला को सीखना है कि कितने इंटरेस्टिंग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, कितनी शुद्धता से अपने आप को प्रेजेंट करना है कि वो थोड़ा सा रुक ले और थोड़ा सा हम फोर्स करें, ज़्यादा नहीं, तो फिर व्यक्ति ले लेता है, है ना। तो ये सीखना है। तो बलाघात बहुत ज़्यादा अतिशयता नहीं होनी चाहिए कि सर के चढ़ ही गए उसको, नहीं लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो मेरा कुछ कुछ बेइज्जती हो जाएगी मेरी, आप लेके ही दीजिए। तो ऐसा नहीं करना। कोई प्रौढ़ भक्त अधिक अधिकार से बात कर सकता था। ये बात कर रहे थे कि जो युवा वर्ग थे वो थोड़े अपरिपक्व थे, तो बड़े वो जबरदस्ती कर देते थे। अब बता रहे हैं कि कोई प्रौढ़ भक्त अधिक अधिकार से बात कर सकता था। त्रिपुरारी लोगों को बताता था कि पुस्तकें किस प्रकार एक प्राचीन सभ्यता का वर्णन करती हैं, जिसमें लोग जानते थे कि जीवन कैसे यापन करना चाहिए। वह अपने आप को एक ऐसे संगठन के सदस्य के रूप में प्रस्तुत करता था जिससे जिसके संप्रदाय सारे संसार में फैले हैं, जिसमें लोग एक वैकल्पिक जीवन शैली के आदर्श का लाभ उठा सकते हैं। त्रिपुरारी और उस जैसे अन्य भक्त जब आध्यात्मिक जीवन की बातें करते तो वे व्यक्तिगत और अनौपचारिक तौर पर दार्शनिक दोनों स्तर पर बातें कर सकते थे। वे अजनबी लोगों को शीघ्रता से अपना मित्र बना लेते थे और पुस्तक खरीदने के लिए उन्हें आश्वस्त कर देते थे, किंतु पुस्तक वितरण करने वाले भक्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी और उन्हें बहुत से अनुभवहीन थे। तो जो प्रौढ़ भक्त थे, मैच्योर भक्त थे जैसे त्रिपुरारी प्रभु, वो बहुत अच्छे ढंग से पुस्तक वितरण करते थे। वो इस संस्था का गुणगान करते थे और बोलते थे ये आपको नया जीवन शैली सिखाएगा, और फिर अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे और बहुत ही इनफॉर्मल होकर फ्रेंडली बात करते थे और बहुत जल्दी नए लोगों को अपना मित्र बना लेते थे और फिर पुस्तक देते थे इस ढंग से। तो अब हमारे बीच में जैसे हमारे पुस्तक वितरण है हिज ग्रेस केशव बलराम प्रभु, है ना। तो केशव बलराम प्रभु प्रतिदिन प्रयास करते हैं, हफ्ते के सात दिन जाएं, सर्दी गर्मी बरसात, कई बार बिल्कुल अकेले भी निकल जाते हैं। तो हम इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अनुभव शेयर करें कि कहाँ लोगों ने इनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कहाँ लोगों ने इनको थोड़ा सा गलत रिस्पॉन्स दिया। इनका तो प्रतिदिन का अनुभव है, इनके पास तो अनुभवों की खान है। तो कुछ अनुभव बताएंगे जिससे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। यस, इसके शरण प्रभु का हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ऐसे हम डेली प्रयास करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो एक बार मैराथन में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो धूप में, काफ़ी धूप थी, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एक गाड़ी पे जा रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी पे गए, तीसरी, कोई खोल ही नहीं रहा था। तो पीछे से एक किसी मंत्री की गाड़ी आ रही थी, तो वो पीछे से देख रहा था बार बार। तो मेरे को लगा कि ये बार बार देख रहा है, इससे मैं ले लेता हूँ, इसके पास जाता हूँ, तो ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर करेगा। तो ऐसे गया फिर मैं, तो जैसे ही गया तो जस्ट ग्रीन लाइट हो गई, तो मैं उसके पास गया। फिर आप रुके रुके, आप आगे आइए, ग्रीन लाइट हो गई है, आप आगे आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। मैंने कहा अच्छा। मैं गया भागते हुए फिर उसके पास, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, कहते हैं आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना डेडिकेटेड हैं, आप लोग चाहते तो अपना जीवन कहीं पर भी लगा सकते थे, लेकिन आपने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है। तो उसने कहा कि मेरे को ये बुक्स दीजिए और आपकी मैं फिलोसफी को जरूर पढ़ूंगा। तो फिर उसने ये बुक्स ली और इसको पढ़ना चाहिए। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट होते हैं। तो ऐसे ही एक बार जाते, मैं मार्केट में गया हुआ था, तो मैं अकेला था, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, शायद राखी थी या कुछ ऐसा कोई त्यौहार था, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था मैं। वैसे दिया तो एक व्यक्ति आया, मैंने उसको एक बुक दी, उसने ले ली। फिर मैंने कहा कि और भी ले सकते हैं, अगर आप पढ़िएगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, आप पढ़ेंगे आपको बहुत लाभ करेगा। तो ऐसे उन्होंने दो ली, उसने कहा और भी है क्या, मैंने कहा हाँ जी। तो जितनी मेरे पास कृष्णा बुक थी, गीता थी और सेट्स वगैरह थे, सारे ले लिए उसने। मैंने कहा धन्यवाद जी आपका। तो जैसे मैंने उसको धन्यवाद किया, वो सीधा मेरे पाँव पे पड़ गया, कह रहा कि धन्यवाद मेरे को करना चाहिए आपको, आप इतना संघर्ष करके आप यहाँ पे आए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारा उद्धार करने के लिए, आप चाहते तो मंदिर में भी हो सकते थे, आप स्पेशली आए और यहाँ पे आके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो सब प्रभुपाद जी की कृपा से प्रयास करते हैं, अगर अच्छे तरीके से करें तो सब लोग मतलब कहते हैं एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और वास्तव में सब लोग जुड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, उनके हृदय में हमें परिवर्तन लाना है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर वो अच्छा उनके पास रिस्पॉन्स चला जाएगा तो वास्तव में वो बुक्स पढ़ेंगे भी और जुड़ने का भी प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से एक बार हम लोग यहीं अभी कुछ दिन पहले विकासपुरी में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो धूप थी काफ़ी, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक माता जी आई, तो हमने बुक्स दिखाई, तो बुक्स नहीं ली, लेकिन वो गई और थोड़ी देर में फिर वापस आई, कह रही मैं आ रही हूँ भी थोड़ी देर में। मैंने कहा पता नहीं इस बार तो लग रहा है कुछ, कहीं किसी को बुला के लेके आएंगी, कुछ हो गया लग रहा है। तो फिर आई और फिर आके क्या कहते हैं, फिर उन्होंने मेरे को देखा और उनका कि ये आपके लिए। मैंने कहा क्या, कह रहे कि ये रफल दे लाए हैं और पेप्सी कोला लाए हैं। मैंने कहा जी हम तो पीते ही नहीं थे। तो कह रहे नहीं 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 नहीं, आप लोग यहाँ पे धूप में खड़े हो गए, आप इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, लो लो लो। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। फिर मैंने हमने क्या अपने ड्राइवर को दे दी, हम तो पीते नहीं, तो उसको दे दी, फिर बाद में दी हमने। हमने कहा अच्छा थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमारे लिए किया। तो फिर वो काफ़ी अच्छी तरह से लेके गई थी। तो और फिर इसी तरह से तो ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया था कि एक उसमें कि अगर अपोजिशन हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा मूवमेंट क्या कहते हैं ये ऑथराइज है। तो ऐसे ही मैं कह रहा था, हम लोग अभी तीन एक दिन पहले वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे जनकपुरी में। तो ऐसे जनकपुरी में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, उसको बुक्स दे दी। तो हमने कहा जी इसका छोड़ा था छपाई सेवा, 100 रुपये आप दीजिए इसका। तो उन्होंने कहा सेवा, किताबों को कौन सा सेवा होता है। तो वो फिर क्या कहते हैं, कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा, कोई पैसा वैसा नहीं दूंगा तुमको। मैंने कहा जी इसका छपाई सेवा, मैं हमारे बीवीटी ये बॉम्बे से बुक्स प्रिंट होके आती है, उसका छोटा सा सेवा ले रहे हैं हम लोग। कह रहा नहीं नहीं, तुम्हारी ये काला बाजारी है, तुम लोग ये काला बाजारी कर रहे हो, कौन सा पैसा, कोई पैसा वैसा नहीं है। फिर मैंने बुक्स उससे लेनी चाहिए, तो उसने ले ली, कह रहा मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं। तो फिर आया थोड़ी देर बाद आया, फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अपनी वाइफ को साथ में लेके आया और खुद पीछे बैठा रहा। तो उसने इसलिए किया कि क्योंकि अगर वो होता तो हम उसको देते नहीं। फिर तो इसने फिर क्या कहते हैं उसको दिया, तो क्या कहते हैं वाइफ को दे दी। हमने उसको बोला कि जी 100 रुपया। तो जब इस तरह से वो पीछे से निकल के डंडा लेके आया इस वाइफ, तो कह रहा तुम्हारी ये काला बाजारी मैं नहीं चलने दूंगा, कह रहे यहाँ जनकपुरी में कुछ भी हो जाए ये नहीं चलेगा सब कुछ। हमने कहा जी हम तो बुक्स बांट रहे हैं जी। कह रहा नहीं मैं चेक दूंगा आपको। मैंने कहा जी 100 रुपए के लिए चेक, 100 रुपए का चेक थोड़ा लेते हैं जी हम लोग। अरे नहीं मैं चेक ही दूंगा।
जी देखिए अगर अच्छा ठीक है आप चेक देंगे जब आपका पास हो जाएगा तब हम लोग कहते हैं आपको चेक देंगे और आपके घर का एड्रेस दे दिए हम आपको पहुंचा देंगे। तो कह रहा नहीं 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 नहीं, कह रहा मैं फिर दोबारा से आता हूँ, फिर चला गया। तो फिर ऐसे गया, फिर दोबारा से आ गया, फिर कह रहा कि तुम लोग कहाँ से हो, मैंने कहा जी हम इस्कॉन मंदिर से हैं, हम लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं। कह रहा नहीं 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 ये जनकपुरी में ये सब नहीं चलने दूंगा, ये जो चल रहा है ना तुम लोगों का ये नहीं चलने दूंगा मैं। कह रहा अच्छा नहीं 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 मैं, तो फिर क्या कहते हैं फिर चला गया मैं, कह रहा अभी तुम्हारे मंदिर जाता हूँ मैं। फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं, बार बार परेशान कर रहा है किसी दूसरी जगह, क्योंकि हम कर रहे थे तो दूसरों लोगों को भी बोलता था नहीं है लोग फ्रॉड कर रहे हैं ये कर रहे हैं, तो मैंने कहा जगह ही चेंज कर लेते हैं हम दूसरी जगह जाते हैं। तो जगह चेंज करी, तो जगह चेंज करी, थोड़ी देर बाद घूम फिर के वहां पे भी आ गया, तो फिर वहां पे भी आ गया। हमने कहा हो गया काम, आज तो लग रहा हो नहीं आज तो कुछ भी। तो फिर इसके साथ फिर क्या थे वो आया, फिर बात करने लगा, कह रहा पुलिस को फोन करो। मैंने कर लीजिए जी हम कोई गलत काम थोड़ा ना करें, करिए पुलिस को, हम भी यहीं बैठे हुए हैं। तो पुलिस को फोन कर दिया, कह रही पुलिस फिर बोली आ रही है, थोड़ी देर में आने लगी। तो जब तक गया थे ऐसे दूसरे लोगों के पास बोलने लगा, फिर हमने बोला जी एक्चुअली में उसने ना शराब पी हुई थी, तो ऐसे ऐसे इस तरह से बोलने लगा और दूसरे व्यक्तियों को बोलने लगा। तो हम लोग क्या कहते हैं फिर उनको मैंने कहा कि इस कौन का इंप्रेशन खराब करेंगे तो हमें बताना चाहिए, मेरे को जाके इनको बोलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। तो ऐसे इस तरह से हुआ, तो मैंने उनको बोला जी इन्होंने शराब पी रखी है, एक्चुअली में आपको पता है हम लोग तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इस तरह से कह रहे हैं हम लोग आपको जानते हैं। तो फिर कह रहे कि नहीं ये कहते हैं आप लोग चले जाइए इनको दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कर ही रहे थे बार बार ये, हम इधर करते हैं इधर आ जाते हैं उधर करते हैं उधर आ जाते हैं, तो ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो फिर कह रहे कि अच्छा चलो ठीक है, फिर उसने खुद ही पुलिस को फोन किया जी हो गई है मेरी बात, कंप्लेंट वापस ले लिया मैंने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो फिर ऐसे हो गया, फिर जाने लगा, फिर पता नहीं उसको हम गाड़ी लेके आगे जाने लगे, फिर कहने लगा तुम्हारा आईडी दिखाओ। मैंने कहा अभी तो बात हो गई भैया सब कुछ हो गया, आप कौन सी आईडी कह रहे हो, तुम्हें जाने नहीं दूंगा आज मैं। तो ऐसे गाड़ी लगा के आगे खड़ी हो गई, तो उसके पीछे उसकी वाइफ अब निकल के आई, फिर वाइफ आई, उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा कि जी देखिए मैं आपके इस कौन मंदिर में विजिट कर चुकी हूँ, आप लोग मैं जानती हूँ आप लोगों को, तो कह रहे हैं हमें क्षमा कीजिएगा एक्चुअली इन्होंने ऐसे इस तरह से किया हुआ है शराब पी हुई है। तो फिर इस तरह से कह रहे कि नहीं जी देखिए वो क्षमा मांग रहे हैं अपनी वाइफ को, वाइफ ने फिर अपने हस्बैंड ने क्षमा मांग रहे हैं जी इसको जान दीजिए। तो ऐसे करते करते फिर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे ऐसे अपोजिशन होते हैं, तो इसका मतलब जैसे प्रभु जी बता रहे थे, तो इसका मतलब ये मूवमेंट कितना ऑथराइज है, हम लोग कितना विशेष कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही कल भी हुआ था इस तरह से ऐसे ही, तो ऐसे क्या होता है ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो फिर एक और इस तरह से कल मेरे को एक और शराबी मिल गया। तो पहले भी उस एक व्यक्ति था उसने चेक मांगा, मैं उसको बुक्स दी, तो कह रहा मैं आपको चेक दूंगा जी। मैंने कहा हो गया आज फिर दोबारा से मिल गया एक और व्यक्ति। तो उसने चेक मांगा, फिर क्या कहते हैं चेक उसने ऐसे किया, मैंने कहा जी चेक नहीं लेते हम लोग 100 रुपए का, हम छोटा सेवा है। तो मैं बुक्स वापस ले लगा, तो बुक्स उसने लिया, तो उसने शीशा बंद ही कर दिया, उसने 2 मिनट तक उसने कंटिन्यू पूरा शीशा बंद रखा, पूरा हाथ मेरा अंदर ही दब गया वहां पे, हाथ अंदर था और वो उसने पूरा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं जी यहाँ पे आपने पूरा शीशा बंद कर दिया है। कह रहा नहीं 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 जी ले लो वापस ले लो ना, तुम वापस ले रहे हो ना ले लो। मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं आप, मैं पुलिस को फोन करता हूँ अभी। तो मैं पुलिस को फोन करने लगा दूसरे हाथ से, कह रहा खोल लिया उसने जल्दी से, मैंने रुको आप क्यों भाग रहे हो, रुको। कह रहा नहीं मैं पुलिस को फोन करता हूँ आप रुको ना, तो क्या भाग गया फिर उस तरह से वो करके। तो इस तरह से ऐसे करते हैं, तो ऐसे अपोजिशन होते हैं काफी सारे, तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं तो ऐसे अपोजिशन मिलेंगी, लेकिन इससे हमें क्या हताश नहीं होना चाहिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि और हमें और उत्साहित हो जाना चाहिए कि हाँ भाई अपोजिशन हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम सही मूवमेंट में चल रहे हैं हम लोग।
बहुत धन्यवाद केशवानंद जी का प्रभुपाद भी। केशवानंद प्रभु पिछले साल विश्व में नंबर 3, नंबर 6 से उसे पहले नंबर 3, हमेशा पिछले कई वर्षों से टॉप 10 में रहते हैं, टॉप 5 टॉप 10 में।
आशीर्वाद है प्रभु जी का कि प्रभु जी के संरक्षण में हम लोग सेवा कर रहे हैं।
सो इसी ढंग से हम देखते हैं, धन्यवाद प्रभु। आप लोगों का भी अनुभव होगा, अगर हम अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं और पूरी समर्पण की भावना से सेवा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम दूसरे के हृदय को छू सकते हैं, है ना। तो जैसे एक बार मैंने शायद पहले भी बताया था, इस गेस मधुसूदन प्रभु मेहरोली में पुस्तक वितरण कर रहे थे रेड लाइट में, तो एक व्यक्ति रेड लाइट में गाड़ी रोक के आया, उनके पाँव पड़ गया। बोले क्या हुआ, बोले माफ़ कर दो। बोले कि कल आपने मुझे पुस्तक देने की प्रयास किया था तो मैंने झूठ बोल दिया था, मेरे पास पुस्तक है। बोले कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कहता है कि आज फिर मेरे को कल रात को मेरे सपने में साईं बाबा आए. उन्होंने बोला शर्म नहीं आती साधु को झूठ बोलते हो, तुमने बहुत डांटा मुझे, तो फिर मैं आज आपके पास आया हूँ, आप मेरे को प्लीज माफ़ कर दीजिए, मुझे पुस्तक दे दीजिए. है तो फिर मधुसूदन प्रभु कहते हैं बुद्धिमान है, बोले ठीक है कम से कम पाँच को. तो फिर पाँच पुस्तक उसको दी. तो ये ऐसे तरह तरह के अनुभव होते हैं अगर हम सही मेहनत से प्रयास करते हैं. मुख्य बात यह है कि जब किसी को पुस्तक बांटे थोड़ा सा हम जोर लगा सकते हैं, लेकिन इतना जोर ना लगाएं, इतना झूठ ना बोलें कि उस व्यक्ति को लगे कि मुझे धोखा दे दिया. कई बार हम झूठ आदतवश बोल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, हमारा ये अनुभव है भौतिक जगत में, कि जब कोई सेल्समैन की वस्तु बेचता है उसको झूठ बोलना पड़ता है, वो दूसरे को धोखा दे रहा है. लेकिन हम प्रभुपाद की जब पुस्तकें बांट रहे हैं, क्योंकि हम साधारण वस्तु बेच नहीं रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, हम तो केवल उनके एजेंट बन रहे हैं. तो जितनी सच्चाई के साथ अपने आप को प्रस्तुत करेंगे उतने ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी. लेकिन आज का संसार में व्यक्ति बहुत जटिल दिमाग का है, कॉम्प्लेक्स माइंडेड है, तो कई बारी हमें उसको उस जंग से बात को इस जंग से प्रेजेंट करना है कि उसको बड़ी इंटरेस्टिंग लगे, है ना, उसकी रुचि उत्पन्न हो और उसके हृदय को भी छूए. तो ये कला हमें प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं. श्रील प्रभुपाद का दर्शन स्पष्ट था किंतु उसकी व्याख्या में विभिन्नता बनी हुई थी. किसी विशेष तरकीब का उल्लेख किए बिना प्रभुपाद पुस्तक वितरण की पवित्रता पर बल देते और पुस्तक वितरकों को बिना रुके आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते रहते. मुख्य चीज पुस्तक वितरण थी. कुछ भी करें कम से कम हम पुस्तक वितरण तो करें. पहले हम सबको किसी ना किसी मात्रा में पुस्तक वितरण में अवश्य भाग लेना चाहिए. प्रभुपाद कहते हैं पुस्तक वितरण हमारा फैमिली बिजनेस है. हमारा परिवार कौन सा है? ये परिवार है. गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज और फिर भक्ति विनोद ठाकुर और फिर गोरक्षदास बाबा जी और जगन्नाथ बाबा जी और फिर षट गोस्वामी. ये हमारा परिवार है और इस परिवार का फैमिली बिजनेस है पुस्तक वितरण. और अगर हम इस गुरु परंपरा से जुड़ना चाहते हैं वास्तविक रूप से और वास्तव में शिष्य बनना चाहते हैं तो इस फैमिली बिजनेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. तो क्या करना चाहिए? हमें पुस्तक वितरण में अवश्य भाग लेना चाहिए. मुख्य कार्य पुस्तक वितरण है. ऑफिसेज में जाएं, दुकान में जाएं, स्कूल कॉलेजेस में जाएं, हमारे पास पुस्तकें होनी चाहिए. एक अच्छे भक्त की गाड़ी में हमेशा कुछ ना कुछ पुस्तकें जरूर होंगी. जहां मौका देखेगा वो पुस्तक बांटेगा. ऑफिस में किसी को हम मिलते हैं, मौका मिले पुस्तक दें, कॉलेज में, स्कूल में, घर में. तो मुख्य कार्य है पुस्तक वितरण. और जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम कला भी सीख जाएंगे. भक्त और अधिक स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद पर जोर डालते रहे. पुस्तक वितरकों को इस बात की चिंता थी कि पुस्तक वितरण के महत्व को किसी तरह कम ना होने दिया जाए, जबकि अन्य जिम्मेदार इस्कॉन नेताओं की इस बात की चिंता थी कि अवांछनीय तरकीबों से संघ की प्रगति में बाधा पड़ सकती है. प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में बलि मदन के प्रश्न का उत्तर अपने एक पत्र में दिया जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया. प्रभुपाद लिख रहे हैं, वास्तविक प्रचार पुस्तकों की बिक्री है. आपको किसी को चिढ़ाए बिना पुस्तक बिक्री की तरकीब जाननी चाहिए. आपके व्याख्यान का प्रभाव केवल 3 मिनट रहेगा, किंतु किसी ने पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़ लिया तो उसका जीवन बदल सकता है. हम किसी को चिढ़ाना नहीं चाहते, किंतु यदि कोई आपकी आक्रामक तरकीब से चिढ़कर चला जाता है तो आप ना समझ हैं और यह आपकी विफलता है. ना तो आप कोई पुस्तक बेच सके और ना वह व्यक्ति आपके पास रुका, किंतु यदि वह पुस्तक खरीद लेता है तो वह वास्तविक सफल प्रचार है. प्रभुपाद की स्थिति साफ थी, पुस्तकें बिकनी चाहिए किंतु होशियारी से और ऐसा ना हो कि किसी के मन में संदेह रह जाए. इसलिए प्रभुपाद ने पुनः दोहराया कि पुस्तक वितरण प्रचार का सर्वोत्तम रूप है. आपके प्रचार की सफलता की ठोस पुष्टि बिकी हुई पुस्तकों की संख्या से होगी. प्रभुपाद ने यह भी लिखा, कला तो वह है कि कहीं पुस्तकें बेची जाएं और कोई चिड़े नहीं. क्या कला है? खूब पुस्तकें बांटे बिना किसी को इरिटेट किए. आप में से कोई और शेयर करना चाहेगा अपना अच्छा अनुभव या कुछ कड़वा अनुभव? बोलिए, माइक दीजिए.
हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी मेरा एक बैड एक्सपीरियंस है तो मैं शेयर करना चाहूंगा और आपसे एडवाइस भी लेना चाहूंगा. मैं कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो एक बहुत जेंटलमैन आए, बहुत एजुकेटेड लग रहे थे देखने में, तो मैंने उन्हें भगवद गीता दी तो उन्होंने मुझे इंग्लिश में अब्यूज किया बहुत बुरी तरह से और मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. तो आप मुझे एडवाइस करें कि इस ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए.
अरे आप बहुत सौभाग्यशाली हैं. जैसे उनको शताब्दी मिल गया था तो अगर कोई हमें अपोज कर रहा है तो हमें याद करना चाहिए चांद काजी को, है ना, कि चैतन्य महाप्रभु को अपोज किया गया था. तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे मतलब कि प्रभुपाद हमें मौका दे रहे हैं कि थोड़े हम अपनी सहनशीलता बढ़ाएं, ठीक है, इसमें विचलित नहीं होना. ये कृपा कृपा हो रही है आपके.
हरे कृष्णा प्रभु
जय. और कोई कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? हाँ याद दीजिए.
हरे कृष्णा प्रभु जी. अभी पुरानी दिल्ली में लास्ट टाइम में जगन्नाथ यात्रा निकली थी तो वहाँ कृष्ण बलराम प्रभु जी से मैं याद उनके साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. तो जैसे रेड लाइट पे गाड़ी रुकी तो मैंने हरे कृष्णा प्रभु जी इस्कॉन मंदिर से और जगन्नाथ यात्रा निकल रही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे. तो कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ ऑफिस से, कह रहा ऑफिस से मैं काफ़ी परेशान आ रहा हूँ. मैंने कोई बात नहीं सर, वो ऑफिस की बात ऑफिस में रह लीजिए, आप ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीजिए. तो कह रहा नहीं 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 पंडित जी मैं लूँगा नहीं. मैंने कहा कम से एक तो लीजिए आप, इसको पढ़िए और जीवन में उतारिए. कह रहा मेरे पास बहुत सारी पड़ी है. मैंने कहा अपने किसी फ्रेंड्स को या मित्र को दे दीजिए आप. तो फिर कह रहा नहीं नहीं. फिर आगे जाके उसने गाड़ी रोकी, ग्रीन लाइन हो गई थी, ग्रीन लाइन के बाद जाकर फिर उतर कर आया वो गाड़ी से. कह रहा सॉरी पंडित जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बुक ले लीजिएगा मैं, मुझे चार बुक दे दीजिए आप. तो उसने 100 रुपये दिए. फिर मैंने प्रभुपाद जी का शुक्रिया अदा करा. मैंने हरे कृष्ण
जय हो. हरे हो. यस और कोई? हम लोग तो बहुत करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन. किसी का मधुर अनुभव आपके अच्छे व्यवहार से कोई प्रभावित हुआ हो, किसी भक्त के अच्छे व्यवहार से? हाँ करना चाहता हूँ.
तो एक बार हम मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा था कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से डिवोटीज एक्चुअली बने. तो एक बार हम लोग जो है मास बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों के पास जाते हैं मिलने के लिए. तो हम लोग नेताजी सुभाष प्लेस में कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे, उनसे अपॉइंटमेंट हो जाए अगर मिल जाए तो उनको जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ. तो हम लोगों ने अपॉइंटमेंट्स एक दिन पहले लेते हैं अगले दिन लोगों से मिलने के लिए. लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोग ले नहीं पाए और अगले दिन जब निकले डिस्ट्रीब्यूशन में तो हर रोज़ निकलना होता है मैराथन के समय. जब निकले हम मैराथन के लिए तो हम लोग नेताजी सुभाष प्लेस पहुँच गए लेकिन कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी. तो वहाँ पर हम लोगों ने किताब निकाली और ढूंढने लगे तो मुझे एक व्यक्ति का नाम मिला और मैंने उनको ट्राई किया, कॉल किया तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट सेट की. तो वो आना कानी कर रहे थे बट समा और किसी ना किसी तरीके से हमने अपॉइंटमेंट सेट कर लिया उनसे और शाम के समय मिलने के लिए गए. तो मैं और कदम बिहारी प्रभु जी थे. तो हम जब उनके पास गए और उनसे बातचीत करनी शुरू की तो वो तो बहुत टच्ड हो गए कि जो है उन्होंने हमें देखा कि इतने जवान हैं और सैफरन में हैं और अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं. वो बिल्कुल मतलब हिल से गए. तो हमने उनको कन्विंस किया, प्रचार किया, बोला, रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने जो है गीता के लिए मान गए. उन्होंने जो है 250 गीता के लिए बोल दिया. ठीक है पहली बारी में ही
250
गीता के लिए बोल दिया. लेकिन बाद में वो इतने टच्ड हो गए, वो इतने उससे इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि वो मंदिर आने शुरू हो गए और मिलने लगे और जो है अब वो माला भी करते हैं, एकादशी भी रखते हैं, हर एकादशी मंदिर भी आते हैं, आज भी आएंगे शाम के समय. उनकी वाइफ भी जुड़ गई, उनकी पूरी फैमिली जुड़ गई एंड ए वेरी नाइस डिवोटी.
गुड. अरे सो प्योरिटी इज अ फोर्स. प्रचार हमने ऐसा करना है कि किसी के हृदय को छुएं. हमारा उद्देश्य होता है केवल पॉकेट छूना है. केवल पॉकेट छूने से काम नहीं चलेगा, हृदय को छूजिए तो पॉकेट को भी अपने आप छू लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. यस प्रभु जी को दीजिए. या माइक लेते ना. यस अरे माइक ऑन कीजिए. वेरी गुड.
हरे कृष्णा प्रभु जी. मैं एक सजेशन के रूप में कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवारों में दोस्तों में फंक्शंस होते हैं, शादी होती है, मैरिज एनिवर्सरी आती है, बच्चों के बर्थडे आते हैं तो हम वहाँ शगुन देते हैं. तो मैंने एक प्रथा बनाई हुई है, उस शगन के साथ एक जूता जरूर देनी है।
हरि बोल, वेरी नाइस, वेरी गुड।
इसको एक्सटेंड करते हुए मेरे दो तीन अकाउंट हैं डिफरेंट बैंकों में, तो मैं वहाँ जाता हूँ और देखता हूँ जिस लड़की ने नया चूड़ा पहना हुआ है, तो उसको तीन गुलाब के फूल रख के गीता प्रेजेंट करता हूँ, और अगर वो ज़्यादा मेरी जान पहचान की है तो उसमें मैं जो शगुन भी देना है वो भी मैं उसके साथ लिफाफे में रख देता हूँ। तो ये दूसरा सजेशन है। तीसरा एक मेरा और एक्सपीरियंस है, मैं एक फैक्ट्री में एडवाइज़र था, 300 वर्कर काम करते थे, तो एज एन एडवाइज़र मैंने एक इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस की और वर्कर्स को 300 वर्कर्स को, जिसमें स्टाफ भी था मैनेजमेंट भी थी, 300 गीता मैंने बांटी और ये कहा कि ये गीता आप पढ़ो और आपको देखो कितना इंसेंटिव मिलेगा। और ये कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि 22 टन प्रोडक्शन के लिए भी वहाँ झगड़ा होता था, 22 से 32 टन प्रोडक्शन हो गई उस इंसेंटिव स्कीम से, और वर्कर्स ने ये कहा कि ये सब गीता की मेहरबानी है।
अरे वाह,
मेरे अनुभव
हैं
जो मैंने कहा
आपसे। थैंक यू वेरी मच। पहुजी का नाम गोपाल कृष्ण जी है और ये बहुत उत्साह से, इतनी उम्र है मोर देन 70, स्टिल रोज खिचड़ी बांटते हैं और कितने उत्साह है लोगों के, पुस्तक वितरण भी करते हैं, कितना सुंदर। वेरी नाइस दामोदर सुंदर प्रभु, ये भी हमारे विश्व के अग्रणी पुस्तक वितरकों में से हैं, टॉप 10 में।
अभी इसी साल का एक इंसिडेंस है भाई, कुंभ मेले में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो जब कुंभ मेले में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम एक स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल क्या अपने डिब्बों का ही खड़ा करके एक स्टॉल लगा देते हैं गीता के, और गीता फ्री में देते हैं वहाँ पे जो मैराथन में स्पॉन्सर होती है, तो गीता फ्री देते हैं, पर हम कुछ 30-40 ऐसे हम 30 रुपये के बुक्स के साथ गीता फ्री देते हैं, तो जो भी आता है पहले 30 रुपये की छोटी किताबें देते हैं और गीता फ्री। तो ऐसे जब वहाँ पे थे तो भाई कम से कम इस बार एक महीना लगभग हम वहाँ पे रहे, तो जहाँ भी जाते थे तो रोज हम वहाँ पे का गीता फ्री का जो है नारा लगाते थे, तो आ जाओ गीता फ्री बैटरी है, पूरा माइक स्पीकर साउंड सिस्टम लेके जाना, और पूरे जोर से गीता फ्री का नारा लगाते थे, और लोग आते थे, भीड़ लगी रहती थी सुबह शाम, बस भक्त लोगों का टाइम ही होता था हाथ मतलब पानी पीने का भी टाइम ही होता था, बस ऐसे नोट गिनते रहते घटघट घटघट, और गीता बैटरी है धड़ल्ले से डब्बे पर डब्बे बैठ रहे, सारी दुनिया देखती रहती थी। तो एक बार क्या रोज आए दिन ऑपोजिशन होता था वहां पे, आए दिन कोई आता रहा, अरे यार तुम गीता फ्री बोल रहे हो, तुम देते तो हो नहीं, गीता तो फ्री दे रहे हैं, तुम जाके लो तो सही 30 रुपये देने के लिए उनको ये बताता। तो ऐसी एक बार ही क्या हुआ, जब कोई भी आता था तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बोल गया चलो है देखेगा तो गीता फ्री है, पर एक दिन ना एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, उसके ना डबल स्टार था, तो मैं दूर से मैं स्टॉल के सामने जो है माइक से जो अनाउंसमेंट कर रहा था गीता फ्री गीता फ्री गीता बैटरी है गीता बैटरी है, तो जब वो स्टार वाला था तो मैं कहा ये अगर ज्यादा कुछ करेगा तो गड़बड़ हो सकती है कि भाई अगर इसने इसने अगर देख लिया और इसने कुछ बोल दिया फिर हमारा स्टॉल गया। तो पहले मैंने वो आया स्टॉल पे बहसबाजी करने लगा, मैं कहा देखा डीओटी झेल लेंगे थोड़ा सा कर लेंगे इसको सेटल कर देंगे हर बार हो जाता है, और ये करता रहा डीओटी भी बोल दिया भाई ठीक है गीता फ्री में दे रहे हैं आप चलो आप ले भी लो, आपको फ्री में पुलिस वालों को दे भी दी चलो आप जाओ थोड़ा सा शांत हो, पर वो पीछे पड़ गया बहुत पीछे पड़ गया, पूरा एकदम स्टॉल हिला दिया उसने, डब्बे फेंकने लगा ये करने लगा वो करने लगा, डबल स्टार वाला था, मैं कहा यार तो गड़बड़ा गया रिस्क की नजर में आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर मैं गया, मैं कहा देखो क्या हो गया, कह रहे तुम क्या है धर्म के नाम पे ये सब कर रहे हो, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, सबको बेगुम बनाया जा रहा गीता फ्री में, अभी गीता फ्री दे रहे हैं, बहुत बोलने लगा बहुत बोलने लगा, मैं कहा ऐसे क्या हो गया क्या ज्यादा हो गया, क्या ज्यादा बोलने लग रहा था, मैं कहा ऐसे मैंने कैमरा निकाला, मैं कहा सारी दुनिया इकट्ठी हो रही थी पब्लिक वहां पे 100-100 लोग थे, दिखाओ कौन बोल रहा है बताओ कौन बता रहा है ये गलत है हाथ खड़ा करो, तो बड़े सारे लोग आगे आ गए और नहीं नहीं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं धर्म का नाम बिल्कुल सही कर रहे हैं कोई गलत नहीं कर रहे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं मानो तुम धर्म के नाम है तुम ऐसे चले सारे के सारे, और पुलिस वाला भगा दिया जनता ने भगा दिया उसको जनता ने उसको भगा दिया, फिर साइड पे आया मैंने उसको शांत किया, मैंने कहा फिर मैं उसके पास गया, फिर कह रहा नहीं नहीं भूजी देखो धर्म के नाम पे आप तो धर्म के सेनानी हो ये है पर ऐसे नहीं वैसे, मैं कहा भाई ठीक है गीता फ्री बोल रहे हो और गीता फ्री दे भी तो रहे हैं तो पता है नहीं रेट कितना है, तुम्हें कुछ जाके देखा तुम बस शुरू हो गए, तो फिर ऐसे ऐसे करते करते वो फिर शांत होकर चला गया। फिर ऐसे हम केस में हम आते थे कमरे में जब शाम को तो हम तो खूब ऐसे हमारे लिए तो एक इंसिडेंस हो जाता था, तो ऐसी चर्चा कर रहे थे ऐसे देखते देखते अगले दिन मैंने देखा हमारे पंडाल में आके प्रसाद पा रहा था और जाती वाली गीता भी लेके जा रहा था तो मैं रुक गया देखा कितना लेते से
चारी वाह यार
तो ये आज की चर्चा का मुख्य बात था बस अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं प्रभुपाद की स्थिति साफ थी पुस्तकें बिकनी चाहिए किंतु होशियारी से ऐसा ना हो कि किसी के मन में संदेह रह जाए इसलिए प्रभुपाद ने पुनः दोहराया कि पुस्तक वितरण प्रचार का सर्वोत्तम रूप है आपके प्रचार की सफलता की ठोस पुष्टि बिकी हुई पुस्तकों की संख्या से होगी प्रभुपाद ने यह भी लिखा कला तो वह है कि कई पुस्तकें बिक जाएं और कोई चिड़े ना हो तो इसलिए हम सब भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पुस्तक वितरण में भाग लें हमें से कई भक्त लोगों ने जो युवा भक्त हैं वो वीकेंड वॉरियर्स शुरू किया है प्रोग्राम वीकेंड वॉरियर्स का मतलब है सैटरडे एंड संडे लोग फ्री होते हैं तो ये हो गया कि सप्ताहांत सेनानी है ना क्या ऐसे हिंदी में बोलेंगे सप्ताह के अंत के दो दिन के लिए सेनानी बन जाए है ना तो दो दिन के लिए सेनानी बन के प्रभुपाद की सेना में भाग ले सकते हैं पुस्तकें बांट सकते हैं और बहुत जल्द जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनके लिए भी स्कीम जारी करने वाले हैं कि शनिवार और इतवार को जो लोग फ्री हों या हफ्ते में किसी दिन में किसी की दुकान की छुट्टी वो फ्री हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं ये आपके पास स्कीम बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पुस्तक वितरण में भाग लें और प्रभुपाद को प्रसन्न करें लेकिन पुस्तक वितरण की कला भी हम सीखें अनुभवी भक्तों से उनके साथ में जाके ताकि हम सही ढंग से इस कान को रिप्रेजेंट कर सकें तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हिताई गॉड प्रेमानंदे